नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे और इन्हें आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को काफी पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए ITR फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। केवल आयकर अधिनियम 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी लेकिन कम बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1 से 6 अधिसूचित कर दिए थे। साथ ही ITR फॉर्म 7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को 2 साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 8.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उद्योग की वृद्धि दर 7.8% रहेगी। भट्टाचार्य ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 3.39 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि 2 लाख युवा उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। संकटग्रस्त चाय के बागानों और पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, चाय के बागानों पर 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि आयकर माफ कर दिया जाएगा। साथ ही 3,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के लिए संचालन नियमों को बुधवार को अधिसूचित कर दिया। 2 अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया कि नियामक के ऑडिटर की अवधि, कर्ज के आकलन और बिना दावे या बिना भुगतान वाली राशि से जुड़े प्रावधानों को दुरुस्त किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल ने सूचीबद्ध कंपनियों की तरह रीट और इनविट के लिए संचालन नियम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नियामक ने रीट और इनविट के लिए प्रावधानों को दुरुस्त किए जाने के तहत कहा कि ऑडिटर का कार्यकाल यूनिट धारकों की 5वीं सालाना आम बैठक पूरी होने तक होगा और सांविधिक ऑडिटर सभी इकाइयों या एकीकृत खातों वाली इकाइयों के सीमित ऑडिट को देखेगा। रीट और इनविट किसी व्यक्ति को लगातार 5 साल से अधिक समय के लिए एक बार से ज्यादा के लिए ऑडिट नियुक्त नहीं करेंगे। देश के प्रमुख शेयर बाजार NSE ने WTI कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस अनुबंधों के लिए डेरिवेटिव मार्केटप्लेस CME ग्रुप के साथ एक डेटा लाइसेंस समझौता किया है। NSE ने बुधवार को बयान में इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत CME ग्रुप के डेरिवेटिव मंच पर WTI कच्चे तेल एवं गैस अनुबंधों को सूचीबद्ध करने, व्यापार करने और उनका निपटान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही NSE पर उपलब्ध उत्पादों की पेशकश का दायरा बढ़ जाएगा। NSE ने बाजार नियामक सेबी से अतिरिक्त वायदा अनुबंधों की पेशकश करने की मंजूरी मांगी है। दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा, उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बेहद अहम है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से अनुरोध किया है कि सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मानकों को सख्त किया जाए। दूर संचार विभाग ने ये कदम लोगों से कॉल ड्रॉप और कॉल की गुणवत्ता को लेकर मांगी गई राय के आधार पर उठाया है। इसके साथ ही आधिकारिक सूत्र ने कहा कि विभाग ने दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी वैश्विक परंपराओं का अध्ययन कर ट्राई के साथ भी उसे साझा किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में आपात चिकित्सा सेवा और हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में सक्रिय कंपनी RPM के साथ एक समझौता किया। HAL ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी। इस आशय के समझौता ज्ञापन पर यहाँ चला रहे एयर शो एयरो इंडिया 2023 के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष मिलकर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों में आपात चिकित्सा सेवा से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। रिस्पॉन्स प्लस होल्डिंग्स यूएई में आपात चिकित्सा देने वाली अग्रणी कंपनी है। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट रहने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 475 रुपए की गिरावट के साथ 56,345 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,820 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 195 रुपए टूटकर 65,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।